اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، تو نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تو نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلوہ سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے۔
اوم شانتی۔ جو چٹانوں سے ٹکراتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ طوفان۔ اور جو طوفانوں سے ٹکراتے ہیں اسے یوا کہتے ہیں، اور جو یوا اوستھا میں دنیا بھر کا ساہتیہ پڑھ کر اپنے ہر کلاس کی شروعات ایک نئی کہانی سے کرتے ہیں، چنتن کی نوینتا اور وشالتا پردان کرتے ہیں اور اس کے مادھیم سے ہر آتما کو جھکجھوڑتے ہیں، چنتن کے لیے اپنے بھیتر جھانکنے کے لیے، کمزوریوں کو نکالنے کے لیے، پرماتما کی شکشاؤں کو صحیح ارتھوں میں جیون میں لانے کے لیے، اسے ڈاکٹر سچین کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سچین کہتے ہیں۔ تو آپ پچھلے، مجھے لگتا ہے تھوڑا پرانا ہے، اس میں 13 ورش لکھا ہے، 15، پچھلے 15 ورشوں سے آپ ایشوریہ گیان مارگ میں بہت ہی تیورتا سے اور قاعدے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کا الوکک جنم وردان بھومی مدھوبن میں ڈائمنڈ ہال میں جو نیچے ہے، اویکت روحانی باپ دادا کے سمک ان کے ہی روحانی نجروں ایوم وردانی بول سے 30 نومبر 2003 میں ہوا۔ آپ لوکک میں بھی بہت میدھاوی چھاتر رہے ہیں، آپ نے لوکک میں MBBS کیا ہے، اس کے پشچات MD انٹرنل میڈیسن، الٹرنیٹیو میڈیسن، FCCM انڈو آسٹریلیا، FICM، FCCS، بہت لمبی لسٹ ہے، اس کے اندر نہ جا کے ہم کہیں گے کہ جیسے اس گیان کو بھی بہت گہرا سمجھنے کے لیے دنیا بھر کا ادھیئن کیا ہے، ایسے ہی میڈیکل لائن کو بھی سمجھنے کے لیے آپ نے دنیا بھر کی ڈگریاں لے رکھی ہیں، اور ورتمان میں آپ گلوبل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انٹینسیوسٹ کے روپ میں 10 اکتوبر 2010 سے اپنی بہمولیا سیوائیں دے رہے ہیں۔ آپ بہت اچھی کویتائیں بھی لکھتے ہیں، پربھو پیار میں جو اندر کے دل کے اشرو بہتے ہیں، اس اوستھا میں آپ کے اندر سے ہردے کے ادگار بھی نکلتے ہیں اور وہ کویتا کے روپ میں، سنکلت روپ میں آپ رکھتے ہیں۔ تو بہت ہی ارجاوان ایوم تیاگ تپسیا والے ہمارے ڈاکٹر سچین جی ہمارے بیچ اپستھت ہیں۔ ہم سب دنیا کے 7 ونڈرز 7 عجوبوں سے بھلی بھانتی پریچت ہیں، لیکن انتر جگت میں بھی 7 عجوبے ہیں، 7 ونڈرز ہیں جن سے ہم ابھی تک بھی انبھگیہ ہیں۔ आज उन्हीं से परिचित कराने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए आप प्रकाश डालने जा रहे हैं इस विषय पर, सेवन वंडर्स ऑफ इनर वर्ल्ड। डॉक्टर सचिन जी,
ओम शांति। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानू सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। राम नरेश त्रिपाठी। कवि भगवान को ढूंढ रहा है, परंतु जहां वो ढूंढ रहा है वहां वो है नहीं। खोज चाहे भगवान की हो या हर व्यक्ति की स्वयं की अपनी खोज, वो ढूंढ ही रहा है, और जहां वो ढूंढ रहा है और जहां वो भटक रहा है और जहां वो सोचता है कि वहां वो है, वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता, और इसलिए जीवन दुख से, विषाद से, दर्द से, पीड़ा से भरा हुआ है। हर व्यक्ति के हृदय में खोज है, अन्वेषण है, वो खोज स्वयं की भी है तो उस परम की भी है। वो है कहां पता नहीं, क्या उस परम को या क्या उस मैं को ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्यों जीवन दुख से भर गया है, क्या कारण है। एक पश्चिम के महान लेखक मिस्टर रिखार्ड, उसने लिखा है, संत वो है जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य का भाव हो, हर चीज उसे आश्चर्य में लाती है, बारिश होती है सोचता है कहां से हो रही है, नदियां बहती है सोचता है नदियां कैसे बह रही है, सुबह होती है सोचता है ये सुबह कैसी है कहां से आती है, सूरज उदित होता है ये सूरज कहां से उगता है, हर चीज आश्चर्य से विस्मय से उसको भरती है। और उसने लिखा है, धर्म अर्थात विस्मय, जब ये विस्मय खो जाएगा, ये जो वंडर खो जाएगा, तब जीवन दुख से भर जाएगा। छोटा सा बच्चा, उसे हर चीज में विस्मय लगता है, आश्चर्य लगता है। समुद्र के तट पर वो छोटे छोटे पत्थर को बीनता है, परंतु एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए वो बचपना है, उसे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु छोटे बच्चे के लिए हर बात में आश्चर्य है। और हिंदी में दो शब्द है, एक आश्चर्य एक विस्मय। आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, दोनों शब्दों में अंतर है। एक है आश्चर्य, एक है विस्मय। आश्चर्य बाहर है, विस्मय आंतरिक है। आश्चर्य विज्ञान है, विस्मय योग है। जब व्यक्ति खुद ही विस्मय से भर जाता है चीजों के प्रति, स्वयं के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति, वो विस्मय उसके जीवन की आंतरिक यात्रा है। जो विस्मय का भाव एक बच्चे में है, वो जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है वो विस्मय खो जाता है, फिर सब कुछ रूटीन, कुछ भी आश्चर्य, कोई भी विस्मय उसे नहीं होता और जीवन दुख बन जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी विस्मय की, उसी वंडर की। संसार में ऐसे 7 वंडर है, पुराने जमाने के 7 क्लासिक और अभी अभी नए 7। एक छोटी सी बच्ची, गांव में पढ़ने वाली, शहर में आती है, बड़े शहर में, और उसके पिताजी उसकी एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कर देते हैं। स्कूल का पहला दिन वो डरी हुई गांव की, उसके वस्त्र साधारण, वो जाती है और स्कूल में बैठती है। सब साथी मित्र या जो विद्यार्थी होते हैं उसकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। फिर शिक्षिका टीचर आती है, सब बच्चे चुप होकर बैठ जाते हैं। टीचर कहती है कि एक सरप्राइज टेस्ट आज करना है सबको, और वो कहती है आप सबको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखने हैं, सभी लिखना चालू कर दो, सरप्राइज टेस्ट। तो सभी लिखना चालू करते थे, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। ये जो छोटी बच्ची होती है इसे समझ में नहीं आता, इसका पहला ही दिन है, क्या लिखूं इसे समझ में नहीं आता है। वो बैठे रहती है, सोचती है कौन सी 7 चीजें लिखूं। टीचर उसको कहती है तुम लिख क्यों नहीं रही हो, लिखो जो आता है वो लिखो। तो वो कुछ तो लिखती है। फिर टीचर सबके पेपर्स कलेक्ट करती है, किसी ने लिखा होता है ताजमहल, किसी ने लिखा होता है क्राइस्ट रिडीमर, एक बहुत बड़ा पुतला है, किसी ने लिखा होता है ग्रेट चाइना वॉल, किसी ने लिखा होता है पेट्रा, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, जो जो जिसकी सोच है, बेबीलोन का गार्डन, हैंगिंग गार्डन। जब इस छोटी सी बच्ची का पेपर आता है तो ये टीचर, उसने जो 7 बातें लिखी होती है वो देखकर स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कुछ चीजें हो सकती है। और उसने जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखे थे वो थे, पहला, क्या होंगे, क्या होंगे, वो लिखती है टू बी एबल टू सी, देखना, देख सकना, ये पहला वंडर है। दूसरा टू बी एबल टू लिसन, सुन सकना। तीसरा टू बी एबल टू थिंक, सोच सकना। चौथा टू फील, महसूस करना। पांचवा टू लाफ, हंसना। छठवा टू बी एबल टू टच, और सातवा, सातवा क्या होगा, फील तो हो गया, टू लव, प्रेम कर सकना। टीचर सोचती है कि हमने तो इन सात चीजों के विषय में कभी सोचा ही नहीं था। दो जगत है, एक है बाह्य जगत, एक है अंतर जगत, एक है मैक्रोकॉज्म, एक है माइक्रोकॉज्म। दोनों ही के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया गया है। वो जो अंतर जगत है गुप्त है, वो जो अंतर जगत है हिडन है, और वो जो अंतर जगत है विराट है, विशाल है, अनलिमिटेड है। तो आज हम उसी अंतर जगत के वो सात अजूबे, उस दुनिया के जो अजूबे हैं, पहले क्लासिकल सेवन थे, फिर उसको रिवाइज किए गए, फिर दूसरे सात बनाए, फिर और सात बनाए, और अभी रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है 2008 का, उसमें फिर से सात नए निकाले, चेंज होते रहे। तो हम आज इस क्लास में सात सात और सात, तीन अलग अलग क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहले बताया, सबसे पहला अजूबा, सबसे पहला वंडर ऑफ द इनर वर्ल्ड है टू सी। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? स्वयं को देखना, खुद को देखना, कहां मैं हूं, कहां मैं जा रहा हूं, ये मेरे जीवन की जो यात्रा है सही दिशा में है या भटक गया हूं। क्या ऐसा विश्वास है कि जिस यात्रा में मैं जा रहा हूं, यदि 10 साल पहले 10 साल के बाद मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे ये संतोष हो कि मैंने जो यात्रा तय की है दैट वॉज राइट। स्वयं स्वयं को देखना, हमें दूसरा और कोई नहीं देख सकता, जान सकता, समझ सकता, पहचान सकता। हम ही स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे भीतर ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें हैं, कुछ सूक्ष्म कमियां, कुछ राज जो हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। और आप सब जब यहां आए हो, यहां आने का एक ही उद्देश्य है, अपने खोए हुए अस्त व्यस्त हुए जीवन को फिर से एकत्र करना, भटके हुए जीवन की धारा को फिर से एकाग्र करना, फिर से स्वयं को देखना। और जब 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 तक यहां है, एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत याद रखना है कि मुझे केवल अपने आप को देखना है, दूसरों को देखना ही नहीं। ये 3 दिन, ये 4 दिन जो मिले हुए हैं जीवन में, केवल एक ही कार्य के लिए, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं के जीवन को देखने के लिए, झांकने के लिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या जो हो रहा है ठीक चल रहा है, या सब कुछ गलत हो रहा है, या सब कुछ ठीक हो रहा है, या फिर मिक्स है, या फिर मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फ्लॉज, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शंस आ गए जिसकी वजह से मैं भटक रहा हूं। व्हाट आर द एनर्जी ड्रेनर्स एंड टाइम वेस्टर्स, क्या है? स्वयं स्वयं को जो देख लेता है वो आगे निकल जाता है, और जिसका ध्यान दूसरों की ओर होता है, दूसरे क्या कर रहे, द अदर में जो उलझ जाता है वो भटक जाता है। एक फिलोसोफर जीन पॉल सात्र ने कहा है, द अदर इज हेल। अपना ध्यान दूसरे से हटाओ, स्व पर केंद्रित करो, खुद को देखो, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कहां भटक रहा हूं। और ये स्वयं को देखना ही सबसे बड़ा अजूबा है, सबसे बड़ा वंडर है उस अंतर जगत का। यदि दूसरों को देखना ही है, क्या मैं उनसे सीख सकता हूं? वो कोई भी हो सकता है, फिर छोटा सा बच्चा भी हो सकता है जो मुझे सिखा सकता है। जरूरी नहीं कि मैं बड़ों से ही सीखूं। महत्वपूर्ण सामने का व्यक्ति नहीं, महत्वपूर्ण है ये भाव कि मुझे सीखना है। छोटा बच्चा मुझे जीवन के वो पाठ पढ़ा सकता है जो किसी यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं पढ़े। छोटे बच्चे से ऐसे राज मुझे पता चल सकते हैं जो आज तक किसी स्कूल में कॉलेज में नहीं पता चले। इंग्लिश ऑथर D.H. लॉरेंस को एक छोटा सा बच्चा पूछता है, why the leaves are green? ये झाड़ के पत्ते हरे क्यों है? हमें पूछे अगर कोई बच्चा तो हम क्या कहेंगे? हरे हैं बस, चुप बैठो, हरे हैं हरे हैं बस। यदि हमने हाँ थोड़ा विज्ञान का अध्ययन किया है तो हम कहेंगे हरे इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। पर क्लोरोफिल है इससे उसका उत्तर नहीं मिल जाता। प्रश्न फिर भी है कि उसी में क्यों है और वो हरा क्यों है? इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा ऑथर, इतना बड़ा विचारक हैरान हो जाता है, सोचने लगता है क्या उत्तर दूं, और फिर अंत में उत्तर देता है कि मुझे पता नहीं, जब मुझे पता चलेगा तब मैं बताऊंगा तुमको। ये मानना कि हमने कुछ भी नहीं जाना है, अभी जानना बहुत बाकी है। सितारों से आगे जहां और भी है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने तो कुछ भी नहीं जाना। जीवन अपाट है, विराट है, जीवन की उस अनंत धारा की जो बूंदे हमारे हाथों में है वो तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो सबसे पहला है अजूबा, स्वयं को देखना, खुद ही को देखना, दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में, दूसरों के घरों में, ऑफिस में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है। सारा ध्यान स्व पर केंद्रित करना है। तो सबसे पहला अजूबा है टू सी, दूसरा है टू लिसन, किसको सुनेंगे? स्वयं को। एक आवाज है अंदर जो कुछ बोलती है, कॉन्शियंस, अंत चेतना। और लंबा समय तक हम जब उसको नहीं सुनते वो दब जाती है, समाप्त हो जाती है। हमें उस आवाज को सुनना है और उस आवाज को सुनने के लिए स्टिलनेस की आवश्यकता है। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस, एक साइलेंस की आवश्यकता है जिसमें वो अंतर मन की आवाज सुनी जाए। सुबह से लेकर रात तक आवाज, इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतना शोरगुल, कैसे वो आवाज सुनी जाएगी? एक पल भी बेचैन से नहीं बैठ सकते। कहीं बैठो भी तो आवाज, आसपास वालों से कुछ बोलना है, कुछ कहना है। क्यों, क्यों इतनी बेचैनी? जब तक चुप न हो जाओ वो आवाज सुनाई नहीं देगी। वो आवाज बहुत सूक्ष्म है, मन की आवाज है, वो डिवाइन कॉल होगा। और एक बात, जब तक ये आवाज, जब तक मेरी अपनी आवाज शांत ना हो जाए उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। उसकी टचिंग्स मेरे थिंकिंग के जो जंजाल है उसमें खो जाएगी। तो दूसरा अजूबा है स्वयं की आवाज सुनना, उसकी आवाज सुनना, वो भी तो कुछ कह रहा है। वो निर्देशक है इस ड्रामा का, इस नाटक का, इस फिल्म का, इस मूवी का। वो चाहता है कि उसके जो एक्टर्स है वो अच्छा पार्ट प्ले करें, इसलिए वो हमें बीच बीच में आके कहता है कि ये जो तुमने किया ये ठीक नहीं था सीन, इसको ठीक करो। पर हम सुने कब? जब आवाज ही आवाज। तो दूसरा जुबा है सुनना। यहां जब बैठे हैं सुनते सुनते भी अपने ही अंतर की आवाज भी सुनना साथ साथ। तीसरा जुबा बताया, द थर्ड वंडर, टू थिंक, सोचना और विचार करना, रुकना और विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। उसके लिए फिर से एकांत की आवश्यकता है और फिर से मौन की आवश्यकता है। जो हम देख पाए अपने संपूर्ण जीवन को एक साथ, ये है। और इसमें कहां गड़बड़ हो रही है, ये संबंध क्यों कड़वा हो गया है, ये संबंध ऐसा क्यों हो गया है, क्यों कलह है, क्यों द्वेष है, क्यों ईर्ष्या है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों डिस्टर्बेंस है लाइफ में, जॉब में, ऑफिस में, माइंड में, इमोशंस में, फीलिंग्स में। ये जानने के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। इसलिए यहां से जाने के बाद भी सारे दिन भर में कुछ टाइम निकालना है खुद के लिए। और सबसे बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय है सुबह का। सुबह का समय खुद के लिए, जिसमें हम बैठ के अपने जीवन को देखें, प्लानिंग करें क्या करना है आज सारे दिन भर। क्या वही चलने दे जो चल रहा है, या इसको रोकने की आवश्यकता है? क्या उसी तरह दिन बिताए जिस तरह कल बिताया था? क्या जिस उसी तरह आज भी वैसा ही संबंध हो जैसे कल वो कड़वाहट थी संबंध में? क्या आज उस संबंध को ठीक किया जा सकता है? क्या नहीं रिपेयर, जो क्रैक, जो डैमेज हुआ था कल किसी शब्द के कारण, किसी घातक इमोशन के कारण, क्या नहीं स्टॉप? विचार, चिंतन, मनन। चौथा अजूबा है टू फील। क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? संपूर्ण सृष्टि में एक सौंदर्य है, विराट सौंदर्य, एक संगीत है। हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खो गए जीवन में। फील करना, स्वयं को फील करना, स्वयं के अस्तित्व को फील करना, दूसरों की पीड़ा को फील करना, दूसरों को क्या लग रहा है, उनकी मेरे प्रति क्या फीलिंग्स है, वो मेरे प्रति खुश है, दुखी है, हर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। फील करना, और फील करने की प्रोसेस फिर से मौन और एकांत में है। छत पर चले जाना, एकांत में बैठना और फील करना जो हवाएं बह रही है, फील करना जो आवाजें आ रही है, पंछियों की, पेड़ों की, वहां से प्रोसेस चालू करना। और फिर धीरे 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 दिनचर्या में भी फील करना, महसूस करना, दूसरों की भावनाओं को, बहुत देर तक हमने उनको निग्लेक्ट किया है, चाहे वो बच्चा ही हो, उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, वो कुछ चाहता है, परंतु हमने अपनी भावनाओं के उसको को उसकी भावनाओं पर थोप दिया है, उसे भी कुछ कहना है, उसे भी कुछ फील होता है, उसे भी कुछ भावनाएं हैं टू फील। तो सबसे पहला टू सी, टू लिसन, टू थिंक, टू फील, उसके बाद टू लाफ। जो अपने ही गलतियों पर हंस सके कि कैसा मैं मूर्ख था, इतनी बड़ी गलती कर दी, अपनी ही पास्ट पर हंस सके और उससे सीख सके, बजाय इसके कि दुख करता रहे, पश्चाताप करते रहा, ये होना नहीं चाहिए था फिर भी हो गया, जीवन में क्यों हुआ, खेल समझे चीजों को, वस्तुओं को, घटनाओं को, जो कुछ हो गया बस पास्ट है वो, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, उससे सीखा जा सकता है। ये जो लाफ्टर है, ये वंडर है, देख लेना कि ये हुआ, ठीक है हुआ तो हुआ, बहुत खराब था, नहीं होना चाहिए था। इस यज्ञ के इतिहास में एक कहानी सुनाई जाती है कि एक माता ब्रह्मा बाबा के पास आई बहुत शुरुआत में, और उसने कहा कि मेरे से इस ज्ञान में आने से पहले का ऐसा पाप हो गया है कि मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। बाबा ने पूछा, क्या किया तुमने? उसने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब यज्ञ 1950 में इधर शिफ्ट हो रहा था और वो उधर थी, वो जो बंटवारे का समय था, उसने कहा कि मेरे घर में आग लगा दी, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था, मेरे घर में आग लगा दी गई और मैं अकेली थी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, नवजात, बचने का कोई मार्ग नहीं था, सारे घर को आग लग गई थी और मैं भी आग में भस्म होने ही वाली थी, तो मैंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों बेटों को नीचे रख दिया, बच्चों को, और उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई और कूद के बाहर आ गई और वो दोनों बच्चे मर गए। उसके बाद में उसको दुख हुआ और दुख होने के बाद फिर वो इस यज्ञ में आई, तो वो पूछती है, बाबा मैं इसको कैसे भूलूं, आप बताओ, मैंने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को मार दिया, एक मां ने। तो बाबा ने कहा, यदि वो ना होता तो ये भी ना होता, उसके बाद ही तो दुखी हुई, उसके बाद ही तो उदास हुई, उसके बाद ही सुख की और शांति की तलाश चालू की और उसके बाद ही तो यहां पहुंची। अब जो हो गया, दूध तो गिर गया नीचे, अब उसको वापस नहीं लिया जा सकता, और लिया भी जाए तो वो पीने योग्य नहीं। जो हो गया वो हो गया, पास्ट स्टॉप, अब उससे सीख लो और आगे बढ़ो। और क्योंकि जो कुछ भी हुआ हमको लग रहा है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था, परंतु सूक्ष्म कोई ना कोई राज उसमें छिपा हुआ है, कोई बहुत बड़ा एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया है। उस माता के पास दो मार्ग है, सारा जीवन दुख कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सारा ये उम्र दुखी होके जियो। दूसरा मार्ग, हो गया बस, अब मुझे उसको बदलना है, वो जो पाप और विकर्म जो भी है, योग से, तपस्या से, चिंतन से, सकारात्मक सोच से। टू लाफ। अगला है टू टच। हमारे टच में कितनी प्यूरिटी है, कि हमारा टच वैसा ही है जैसे एक मां का टच होता है, या उसमें विकार है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थूल टच से भी ज्यादा सूक्ष्म टच, द टच ऑफ लव। feelings, the touch of belongingness. कितनी आत्माएं हमारे संपर्क में आई और उनको लगा कि ये मेरा है, ये मेरी है. एक बहन ने अपना अनुभव लिखा है दादी प्रकाशमणि के लिए. 18 जनवरी 1969 के कुछ समय पहले दादी प्रकाशमणि जब मुंबई में थे, मुंबई से यहां आ रहे थे माउंट आबू, ट्रेन में थे, एक टिकट कम थी, शायद वेटिंग पर थी, और वो एक कन्या थी. तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए ट्रेन में, परंतु वो कन्या बीच में बोरी जो थी, जो सामान था उनका रखा हुआ, उसके ऊपर बैठी हुई थी. आधी रात में दादी की आंख खुली तो दादी ने देखा ये कन्या तो बैठी हुई है, तो उस कन्या को कहा कि तुम सो जाओ, मैं बैठूंगी, और उस कन्या को सुला दिया दादी ने, और दादी आधी रात उस बोरे पर बैठी रही योग करते हुए. क्या वो कन्या भूल पाएगी, क्या दे दिया उसने, क्या मिल गया उसको, अपनापन, कौन सा टच था वो, मातृत्व का टच था, प्रेम का टच था. तो हमारे टच में वो मदरली टच आ जाए, हमारे टच में वो डिवाइन टच आ जाए, हमारे टच में वो प्यूरिटी आ जाए कि किसी को टच कर दो तो उसे प्यूरिटी के प्रकंपन महसूस हो, और होगा तब जब विचार इतने शुद्ध होंगे. लास्ट टू टू लव, प्रेम करना, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी. प्रेम, परंतु कैसा प्रेम हो वो, बिना स्वार्थ का. ऐसा नहीं कि हम इससे प्रेम करें तो वो भी हमसे प्रेम करे. यू लव मी देन आई विल लव यू. लव इज नॉट अ बार्गेन. बेशर्त, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के. कंडीशन, अपेक्षा, स्वार्थ, ट्रायंगल ऑफ लव. स्वामी विवेकानंद ने विदेश के एक क्लास में, एक लेक्चर में ट्रायंगल ऑफ लव की चर्चा की है. ट्रू लव इज वन विच इज अनकंडीशनल, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. द थ्री, दिस इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ लव. हम दुखी इसलिए है क्योंकि लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन है. जिससे हम प्यार करते हैं उसको हमने गुलाम बना के रखा है कि तुम ये करो. यदि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम हो जाए तो वो प्यार बढ़ जाएगा उसका हमारे प्रति. तो ये सात अजूबे अंतर जगत के और सात अजूबे हैं. जैसे वो जो अजूबे है, क्राइस्ट द रिडीमर बहुत बड़ा पुतला है, ताजमहल महल है, पेट्रा एक सिटी है, कोलोसियस एक जगह है, मैको पिच्चू एक जगह है, कोई फोर्ट है, कोई सिटाडल है, इस तरह के वो साथ है, चाइना वॉल है, उसी तरह अंतर जगत में भी सात अजूबे हैं. और सबसे पहला है ज्ञान का किला, द सिटाडल ऑफ नॉलेज, द फोर्ट्रेस ऑफ नॉलेज. यहां आप सब आए हैं अपने आप को ज्ञान से भरना है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है. जीवन में यदि दुख है तो दुख का कारण अज्ञान है, और अज्ञान को ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है. जरूर कोई ना कोई अंधकार है, जरूर कोई ना कोई अज्ञान है, कम अंडरस्टैंडिंग है किसी बात की, कम बोध है, इसलिए दुख है। यदि वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। ज्ञान से स्वयं को भर दो। ज्ञान का किला हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आएगा वो। हाँ, बाहर वाले मदद करेंगे, बट सब कुछ अंदर है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity. Education is the manifestation of perfection which is already in man. Education ki paribhasha di hai Vivekananda ne. It's the manifestation of perfection which is already in man. Kahi bahar se perfection nahi lana hai, sampurnata andar hai, usko prakat karna hai, abhivyakt karna hai, manifest it. That's it. तो सबसे पहला अजूबा जो है वो है ज्ञान का किला। उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। और जो सात अजूबे बताए, देखना, सुनना, महसूस करना, सोचना, स्पर्श करना, हंसना और प्रेम करना, इस स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने अंदर ज्ञान को इतना भर देना कि एक किला बन जाए, कि संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या हमें हिला ना सके। क्योंकि जीवन अस्थिर है, हजारों बातें उसमें होती रहती है सुबह से लेकर रात तक, सब हलचल वाली। ये कुछ भी यदि डिस्टर्ब ना करे तो एक किला निर्माण करना पड़ेगा। कौन सा किला? ज्ञान का। उसके लिए ज्ञान केवल सुनना नहीं, पर जो सुना है उस पर चिंतन करना, उसमें रुकना, सोचना, मनन करना, अध्ययन करना, उसको और बढ़ाना। जो पहले से सुन रहे हैं उनको इसकी गहराई को बढ़ाना है, और जो नए हैं उसे इसे संपूर्ण रूप से जानना है। है क्या अधूरा ज्ञान बहुत नुकसान करता है। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। हर चीज को गहराई से जानना है क्या, विस्मय का भाव, यह है क्या, ये लोग कौन से हैं, ये कौन सी जगह है, क्यों यहां ये लोग रह रहे हैं, ऐसा वातावरण यहां क्यों है, क्यों ऐसा वातावरण वहां नहीं है जहां हम रहते, क्या अंतर है वहां और यहां में, सारी बातों के बारे में सोचना, तो पैदा ज्ञान का किला। दूसरा, पवित्रता का महल। उन सात अजूबों में एक अजूबा ताजमहल है, एक प्यूरिटी का पैलेस अपने अंदर क्रिएट करना है। उस प्यूरिटी के पैलेस में सेफ्टी है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्यूरिटी है, जिसमें जितना प्यूरिटी का बल होगा उतना ही माइंड एकाग्र हो सकता है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट, और बाय कॉन्सेंट्रेशन से सारा ज्ञान हप किया जा सकता है। अभी कॉन्सेंट्रेट होता नहीं है क्योंकि माइंड इम्प्योर है। क्या करे जिससे माइंड प्योर बन जाए? तो प्यूरिटी का महल निर्माण करना है अंदर। दूसरा, उसके लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत सौगंध, कि हमें अपने जीवन को प्योर बनाना है, जिसमें कलंक ना हो, दाग ना हो, स्वच्छ बनाना है। जितनी स्वच्छता हृदय की होगी उतना ही जीवन सुखदायी होगा। तीसरा, शांति का टावर। यहां पर शांति स्तंभ देखा है, वैसा शांति स्तंभ इधर निर्माण करना है। जो लोग मुरली सुनते हैं, एक बहुत सुंदर मुरली में वाक्य कभी आया था, भगवान ने कहा हुआ वाक्य कि अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक समय आएगा जब तुम खुद शांति स्तंभ बन जाओगे तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। इतना शांत, इतना स्थिर, बाहर हलचल और हम स्थिर। तो शांति का स्तंभ तीसरा जुबा है। कौन सी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है उसकी एक लिस्ट बनानी है। कौन सी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है, मेरी शांति को भंग कर देती है एकदम। यहां बैठकर प्लानिंग करनी है वहां क्या होता है उसकी। अपने घर में कौन सी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर देती है, यहां बैठकर अगले दो दिन में प्लानिंग बनानी है, लिखना है और फिर सोचना है इसको मैं कैसे ठीक करूं। ऑफिस में जाते ही या घर में या और कहीं स्थान पर कौन डिस्टर्ब करता है उसकी यहां पर प्लानिंग करनी है। बहुत समय पहले यहां पर मधुबन में रशिया से कुछ साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने उस एरिया को मेजर किया था, शांति स्तंभ से लेके तो कुटिया तक। और उन्होंने, उनके पास कुछ डिवाइस थे और उन्होंने कहा था इस स्थान पर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस है कि हमने ऐसे वाइब्रेशंस और कहीं नहीं देखे। लॉन्ग लॉन्ग एगो ये जो एरिया है शांति स्तंभ से लेके तो वो ट्रैक जो है कुटिया तक का, उसमें दे सेड दिस प्लेस कंटेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, कुछ तो है इधर। वो लोग तो नॉन स्पिरिचुअल वैज्ञानिक थे, इतना कहकर चले गए थे। तो ऐसा शांति स्तंभ अंदर स्थापित करना है। चौथा, उधर एक जो अजूबा है उसको कहते हैं क्राइस्ट रिडीमर। जीसस क्राइस्ट ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा है, बहुत बड़ा पुतला, सुख की मूर्ति अपने अंदर स्थापित करनी है, एक स्टैच्यू ऑफ हैप्पीनेस। वो एक सबसे बड़ा अजूबा है, वो है, सुख कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। आप सब ने एक चीज पढ़ी होगी, एल्केमिस्ट, बहुत फेमस बुक है, सब जगह रखी रहती है। एल्केमिस्ट पाउलो कोहिलो, एक गडेरिया होता है, एक शेफर्ड, एक चरवाहा, वो रात में स्वप्न देखता है और उसे स्वप्न में दिखता है कि इजिप्ट के जो पिरामिड है उसके नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है और वो सोचता है क्या करूं। एक बार एक व्यक्ति को अपना ड्रीम बताता है, वो व्यक्ति कहता है मैं राजा हूं, और वो व्यक्ति उसको कहता है कि ये तो सही होगा, तुम सब कुछ छोड़ दो, बेच बाज कर इजिप्ट में जाओ। वो स्पेन में देखता है ये स्वप्न, तो अपने सारी भेड़ को बेच देता है और अफ्रीका पहुंचता है इजिप्ट में जाने के लिए। और वहां आते ही एक चोर उसका सारा सामान लूट लेता है। फिर सोचता है अब क्या करूं, वहां एक साल तक नौकरी करता है, वहां की भाषा दूसरी, अरेबियन भाषा, एक साल तक नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद उसके पास पैसे आ जाते, फिर से भेड़ खरीदता है, सोचता है घर जाऊं, पर देखता है एक कारवा जा रहा है इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर, उस कारवा को ज्वाइन कर लेता है और फिर चलने लगता है। फिर उसको कोई और मिलता है, एक कन्या, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरह से दो तीन चीजें होती है और लास्ट में वो वहां पहुंच जाता है, वो पिरामिड के पास जहां पर सारे खजाने होते हैं जो उसने बार बार स्वप्न देखा है कई बार। और वहां पहुंचते इतना खुश हो जाता है वो, तो वहां पर और कुछ दूसरे चोर आ जाते हैं, रॉबरर्स, और वो उसको फिर से लूट लेते हैं। और उसमें से एक रॉबरर, एक डाकू कहता है कि तुम यहां क्यों आए, तो वो कहता है मुझे स्वप्न आया था इसलिए यहां आया हूं, इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। वो डाकू कहता है मुझे भी स्वप्न आया था, और मैंने ये देखा था स्पेन में ये खजाना गड़ा हुआ, यहां नहीं। तो वो सैंटियागो, उसका नाम होता है सैंटियागो, वो वापस घर आता है और घर आने के बाद जिस झाड़ के नीचे उसने स्वप्न देखा था उसको खोदता है और वहां उसको खजाना गड़ा हुआ मिलता है। ये बहुत प्रसिद्ध किताब है एल्केमिस्ट, इसमें बहुत सारी और बातें हैं, पर शॉर्ट में ये कहानी है कि जिस खजाने की तलाश में वो इतना समय जाता है, सब कुछ बेच बाज कर भटकते रहता है अफ्रीका में, वो खजाना उसको वही मिलता है जहां उसने वो स्वप्न देखा था। सुख वो खजाना है जो हमारे अंदर गड़ा हुआ है, किसी भी बाहर के व्यक्ति वस्तु में वो नहीं है। कितना भी प्राप्त कर लो अतृप्ति रहेगी। एंड्रयू कार्नेगी ने जब शरीर छोड़ा था, विदेश का सबसे प्रसिद्ध सबसे धनवान व्यक्ति, द रिचेस्ट मैन एट दैट टाइम, उसके पास 10 अरब पैसे थे, 10 अरब की संपत्ति थी, फिर भी वो दुखी था क्योंकि उसकी इच्छा थी 100 अरब, 90 अरब कम थे और वो दुख से ही मरा। बाहर की संपत्ति कभी तृप्त नहीं कर सकेगी हमें। तो सुख की मूर्ति, उसके बाद है आनंद का फाउंटेन हमारे ही अंदर है, द फाउंटेन ऑफ ब्लिस, जॉय, रैप्चर, एक्स्टेसी। ये कहीं बाहर नहीं है, मौन चाहिए, एकांत चाहिए, फिर वो महसूस होगा कहां है, अंदर। प्रेम का मंदिर, नेक्स्ट, प्रेम का मंदिर, ये सबसे बड़ा अजूबा है जो कि हमारे ही अंदर है। प्रेम किसी और से नहीं लेना है, आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। कोई व्यक्ति क्रोध में रह सकता है 24 घंटा? इसका मतलब क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। परंतु कोई सोचे मुझे प्रेम पूर्व रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, आज सबसे प्रेम से ही बात करना है, तो हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है, सोल का, लव इज इट्स नेचर, इसके लिए वो पॉसिबल है। और ये जो क्रोध है, ये जो इरिटेबिलिटी है, ये जो दुख है, ये हमारा नेचर नहीं है, ये बाहर का है, ये तो हमने ओढ़ रखा है। शेक ऑफ दिस सूडो नेचर। अमृतस्य पुत्रा, अमृत की तुम संतान हो, आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम् आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, जो सूर्य का प्रकाश है वो तुम में है, तुम अमृत की संतान हो, यू आर चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टैलिटी। और लास्ट है, जैसे वो चाइना की वॉल है वैसी वॉल है शक्ति की हमारे भीतर। ऐसी वॉल क्रिएट करनी है, किला बताया वॉल, उस वॉल में अभेद्य हो, इतने अंदर से हम शक्तिशाली बन जाए, इतने पावरफुल बन जाए कि परिस्थिति आए परंतु हमें दुखी न बना सके, सब कुछ नष्ट हो जाए बाहर का परंतु हम अडोल खड़े रहे। तो ऐसे ये 7 अजूबे हैं अंतर जगत के, ज्ञान का किला, पवित्रता का महल, सुख का टावर, शांति का टावर, सुख की मूर्ति स्टैच्यू, आनंद का फाउंटेन, प्रेम का मंदिर और शक्ति की ग्रेट चाइना वॉल। अभी लास्ट और 7 अजूबे, ये जो अजूबे है ये अब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थिति से संबंधित है आत्मा के, मैं जो हूं उस स्थिति से संबंधित। सबसे पहला अजूबा है सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्म अभिमानी स्थिति। एक होता है देहभान की अवस्था, शरीर को मैं देख रहा हूं, शरीर से इंटरैक्ट कर रहा हूं, ये देख रहा हूं ये स्त्री है ये पुरुष है, ये देख रहा हूं ये अमीर है ये गरीब है, ये देख रहा हूं इसका पोस्ट ऊंचा है इसका पोस्ट नीचा है, देहभान, देहाभिमान, देह अहंकार। और दूसरी एक विजन है सोल कॉन्शियस विजन। सोल कॉन्शियस विजन ये स्टेज है आत्मा की, बहुत पावरफुल, इसमें टिकने का अभ्यास करना है। ये सारा ज्ञान योग जो इतने सालों से 80 वर्ष से ये यज्ञ चल रहा है, एक ही चैप्टर है फर्स्ट एंड द लास्ट, सोल कॉन्शियस, इसी को पक्का करना है। धीरे धीरे मैं वो नहीं ये जो दिख रहा है, इसके भीतर एक नॉन फिजिकल एलिमेंट है, वो मैं हूँ। नच भाति भूत संगम, ये भूत का संग, दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी, आई एम नॉट, आई एम दैट स्पार्क ऑफ ल्यूमिनोसिटी, आई एम दैट स्पार्क ऑफ इटर्निटी, आई एम दैट स्पार्क ऑफ डिविनिटी, आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम दिस ओल तत्वमसी, मैं वो आत्मा हूं। ये जो स्थिति है आत्मा की, ये सबसे बड़ा अचूभा है, ये पहला आत्माभिमानी स्थिति। दूसरा है मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता की स्थिति। जब जब हम मौन में होंगे तब तब हम शक्तिशाली है, जब जब हम एकांत में होंगे तब तब शक्तिशाली है, जब जब अंतर्मुखी है तब तब शक्तिशाली है। सारी व्यस्त दिनचर्या में इन तीन चीजों के लिए टाइम निकालना है, मौन, साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड इंट्रोवर्शन, एकांत और अंतर्मुखता। क्योंकि ये तीनों ही बहुत पावरफुल स्टेज है सोल की, क्योंकि इसमें एनर्जी डिप्लीट नहीं होती है, नहीं तो बोल से एनर्जी डिप्लीट हो जाती है सारे दिन भर। तो फर्स्ट स्टेज है सोल कॉन्शियसनेस, सेकंड स्टेज है साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड इंट्रोवर्शन, थर्ड स्टेज निराधार और स्वतंत्र। निराधार ये अनुभव करना है कि मैं निराधार हूं, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में अभ्यास करना इस अवस्था का, क्योंकि ये जो अवस्था है ये अजूबा है, एक वंडर है जिसमें बहुत पावर है। और इस जगत का एक सिद्धांत है, इस संसार में कोई भी हमारा सगा नहीं है एक उसके सिवा, जिसको लगता है ये मेरा वो मेरा, सब स्वार्थ है, एक ही अपना है वास्तव में अगर देखा जाए तो। इस बात का अभ्यास करना कि मैं आत्मा निराधार हूं, किसी का भी आधार नहीं, स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट हूं। क्योंकि जितना डिपेंडेंसी होगी दुख होगा, जितनी कम डिपेंडेंसी वो व्यक्ति सुखी। अपने आप को इंडिपेंडेंट करते जाना, ये तीसरा अजूबा है आत्मा का। चौथा कर्मेंद्रिय जीत, ये ऊंचे शब्द है अध्यात्म के, जितनी सात बातें आप बता रहे हैं, लंबे समय की साधना या जीवन भर की साधना की आवश्यकता है। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात रूप रस गंध स्पर्श शब्द, आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे, हाथ क्या स्पर्श कर रहे, जिह्वा क्या और सुगंध क्या, सभी को वश में रखना, ये बहुत पावरफुल स्टेज है आत्मा की। जो इनका गुलाम है, इंद्रियों के दीवाने हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त है, ये खाऊं वो खाऊं, ये देखूं वो देखूं, इसको हाथ लगाऊं उसको हाथ लगाऊं, बेचैनी है, चलायमान है इंद्रिया। इन इंद्रियों का दमन, इन इंद्रियों को एकाग्र कर देना, इन इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा डेली, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं होगा, थोड़ा 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 रोज। उसके लिए अपने भोजन का थोड़ा टाइम टेबल फिक्स करना है, उसके लिए अपने सोने का थोड़ा टाइम टेबल फिक्स करना है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है। यहां बैठकर प्लानिंग करो वहां की दिनचर्या कैसी होगी, यहां बैठकर अगले दो दिन में प्लानिंग करनी है वहां जाकर क्या करना है, तो ये एक अजूबा है। अगला है उपराम और साक्षी स्थिति, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। कुछ समय शायद सुबह या शाम एक स्क्रीन देखना और उस पर देखना स्वयं को, अपने आप को डिटैच्ड होकर कि ये स्क्रीन में प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, उसमें मैं हूं और मैं वो नहीं हूं, पर मैं अलग हूं, अपने आप को अलग कर देना अपने आप से ही। ये जो रोल्स हम प्ले कर रहे हैं, माँ, बाप, बहन, बीबी, बच्चे, स्टूडेंट, टीचर, ऑफिस में कोई एम्प्लॉई, ये सब रोल्स है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई नाम, अमीर, गरीब, इस शहर का रहने वाला, ये भाषा बोलने वाला, दिस इज ऑल नेम्स एंड टाइटल्स जो आत्मा के ऊपर डाले हुए हैं। अपने आप को साक्षी होकर देखना, वो मैं हूं, कुछ समय, ये बहुत पावरफुल स्टेज है डिटैच्ड ऑब्जर्वर की। अगली स्टेज है परमात्मा प्रेम, वो जो एक ईश्वर है उसके प्यार में मगन करके स्वयं को देखना है, क्या अनुभव होता है, बहुत स्ट्रांग अनुभव होगा, उसको अपना समझ के देखना कि तू ही सब कुछ है, तेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अगर जैसे संसार में इतने भगत थे, जिद करते थे भगवान के सामने, जब तक तुम नहीं उत्तर दोगे मैं हिलूंगा नहीं, तो यहां पर भी ऐसे करना, जब तक तुम उत्तर नहीं दोगे मैं हिलूंगा नहीं, यहां से मजबूर कर देना उसको प्रेम में, वो बंधा हुआ है प्यार में। तो परमात्मा प्रेम जो अवस्था है बहुत स्ट्रांग अवस्था है। कितने हुए? छह। लास्ट स्टेज है निर्भय, फियरलेस। मैं आत्मा निर्भय हूं, मुझे ना तो बीमारी का डर है, ना तो मृत्यु का डर है, ना तो स्वयं की मृत्यु या स्वयं की बीमारी या मेरे जो आसपास है उनकी मृत्यु और उनकी बीमारी। मैं पावरफुल सोल हूं, स्ट्रांग सोल हूं, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ऐसे स्ट्रांग संकल्प करने हैं। ये सात चीजें जो बताई, ये अंतर जगत के सात अजूबे हैं। इन पर काम करना पड़ेगा, खाली थियरी या अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। एक लेना और एक एक दिन एक एक पर काम करना कि आज मुझे साक्षी होकर अपने आप को देखना। जैसे सड़क के किनारे मैं खड़ा हूं, लोग आ रहे जा रहे, वैसे मैं खड़ा हूं, विचार आ रहे और जा रहे, विचारों को भी साक्षी होकर देखना, अपनी भावनाओं को भी साक्षी होकर देखना। तो ऐसे ये सात सात और सात फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला देखना, दूसरा सुनना, तीसरा सोचना, चौथा फील करना, पांचवा हंसना, छठवा टच करना और सातवा टू लव। ये देखना कि मेरे जीवन में प्रेम भरा है या घृणा या नफरत। यदि घृणा भरी है, नफरत भरी है, तो जरूर कुछ ना कुछ गलत है। किसी के प्रति हेट्रेट है, एंगर है, कोई व्यक्ति सामने आ जाता है एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो नहीं चाहिए, ऐसा लगता है ये यहां नहीं रहे, ये चले जाए, इसकी ट्रांसफर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो बस। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। इसको लिख के रखना है अपनी डायरी में, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना होगा। और जब तुम बदल जाओगे तो वो सब बदल जाएगा। ये साथ, फिर उसके बाद में दूसरे साथ ज्ञान का किला, प्यूरिटी का महल, शांति का टॉवर, सुख का स्टैच्यू, ब्लिस का फाउंटेन, फाउंटेन ऑफ ब्लिस। उसके बाद टेंपल ऑफ लव, उसके बाद में द ग्रेट वॉल ऑफ पावर्स। ये सात, उसके बाद में लास्ट सात सोल कॉन्शियस स्टेज, प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। सारी दिनचर्या में एक दूसरे से मिलो तो सोचो कि ये सेट ऑफ संस्कार से एक आत्मा मिल रही है, आत्मा आत्मा से मिल रही है, एक दूसरी आत्मा है जिसको मैं मिल रहा हूं और मुझे इसके विशेषता देखनी है। तो सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा बताया साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड इंट्रोवर्शन, ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था निराधार, मुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं, जैसे वो निराधार है मैं भी निराधार। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड थाउ वर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी। हे प्रभु, यदि ये सूरज चांद सितारे सब कुछ नष्ट हो जाए और तू अकेला बच जाए, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी, सब कुछ तुझ में फिर भी रहेगा सब कुछ, क्योंकि तू स्वयं भू है, वैसे मैं आत्मा भी स्वतंत्र हूं, किसी का बंधन मुझे स्वीकार नहीं है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी घर का, किसी संबंध का, मैं निर्बंधन हो, निराधार हो, शक्तिशाली पावरफुल संकल्प है ये। अगला कर्मेंद्रिय चीत, ये जो कर्मेंद्रिय भाग रही है, खाऊ 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 खाऊ, क्या खाऊ, क्या बनाए है, उठते ही सबसे पहला संकल्प क्या बनाए है, आज नाश्ते में क्या आएगा, दिन रात बस वही है, खाऊ 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 खाऊ, कंट्रोल संयम, नहीं तो बीमारियां खड़ी है बहुत सारी, ढेर सारी बीमारियां तो खड़ी है। नेक्स्ट उपराम एंड साक्षी, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, अपने संपूर्ण जीवन को 24 घंटे में एक बार, कितनी बार, 24 आवर्स में वंस साक्षी होकर देखना, ये मैं, अपना नाम भी लेना कि ये देखो ये मैं, यहां हूं यहां हूं यहां हूं, आज सारे दिन भर में ये किया, सुबह उठा फिर यहां गया फिर ये किया फिर वो किया, रिवाइज करना एक बार, साक्षी होकर देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट परमात्मा प्रेम क्या होता है उसका अनुभव करना है, और मधुबन परमात्मा प्रेम की भूमि है, इस भूमि में क्या वो प्रेम है, कैसा वो प्रेम है, अव्याख्य अनस्पीकेबल, उसका अनुभव करना है। आत्मा जब इस प्रेम से भर जाती है, आंसू बहने लगे आंखों से, संसार के लोग बकेट बकेट भर के आंसू बहाते एक दूसरों के लिए, कौन है जो भगवान के लिए आंसू बहाए, ऐसा एक आंसू भी आ जाए तो हो भाग्य, उसके लिए मोती बन जाएंगे, भगवान उन आंसुओं को अपने दिल की डब्बी में रख देगा, उसके दिल की डब्बी में, तो ऐसे झरझर आंसू बहे उसके प्यार में, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, उससे कुछ मांगना नहीं, तू उससे कुछ केवल बात कर रहे है, उसके प्यार में खो गए हैं, कुछ भी मांगना नहीं है उससे, केवल विशुद्ध स्नेह, संपूर्ण स्नेह, ऐसा प्यार। उसके बाद फियरलेस का अनुभव करना है, मैं आत्मा फियरलेस हूं, मुझे इस संसार में किसी का भय नहीं, न मृत्यु का, न बीमारी का, ना और कोई संकट का, ना बाधा का, जो भय है अज्ञात, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, मेरे सारे भय समाप्त हो गए, भगवान छत्र छाया है, ये संकल्प, मैं खुद शक्तिशाली हूं, ये संकल्प। तो ऐसे ये 7+7+7 वंडर्स ऑफ द इनर वर्ल्ड याद रखना। ओम शांति। सभी सेंटर्स वंडर है,
ओम शांति। डॉक्टर सचिन के बारे में कुछ कहना समझना, हमने एक अपने सचिन जी को देखा है हिंदुस्तान में क्रिकेट की फील्ड में, उन्होंने एक बहुत ही छोटी अवस्था में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज भाई साहब ने तीन तरह से 7 वंडर्स की इतनी अच्छी व्याख्या करी है और हमारे सामने एक एक वंडर को एक कीर्तिमान की तरह स्थापित किया है, तो ये हमारा बड़ा भाग्य है और उसके लिए हमें गायत्री बहन जी का बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे विचारवान हस्तियों को हमारे सामने इन्होंने समक्ष लेके आया, इनका प्रेम लेकर के आया है कि हमें पता चल रहा है कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इन्होंने बताया कि विस्मय उत्सुकता की जननी है, विस्मय उत्सुकता की जननी है, जो कि ज्ञान अर्जन का प्रथम सोपान है। तो ये बहुत सी अच्छी बातें, जो बहुत बेसिक बातें हैं कि हम स्वयं को देखें, स्वदर्शन सुनते आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या करी है कि हमें क्या देखना है, अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है और साइलेंस बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, विचारों का साइलेंस। जब तक विचारों का साइलेंस नहीं करेंगे हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ महसूस नहीं कर सकेंगे। और हंसने की कितनी कितनी जरूरत है हमें, और जो स्वयं पर हंस सकता है वो एक्सेप्टेबिलिटी जीवन में सीख जाता है। स्वयं की कमियों को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद भाई साहब ने बताया टू टच टू लव, विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम। इसके बाद तो ज्ञान की जो इन्होंने यात्रा कराई, सिटाडेल ऑफ नॉलेज, प्योरिटी का जो पहले समय स्थापित करना अपने अंदर, शांति का स्तंभ, सुख की मूर्ति, इनका एक श्रवण करना इन बातों का अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। तो डॉक्टर साहब आपने जो भी ज्ञान पॉइंट्स बताए हैं उनके श्रवण मात्र से हमारे अंदर बहुत हर्ष की एक अच्छी लहर दौड़ी है, और उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि इन बातों को अगर हम थोड़ा भी सुन के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि यहां पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।